जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद बोलो जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी कपिल देव के भाव में आए हैं, जो माता देहूती के पुत्र थे, और भगवान कपिल ने अपनी माता देहूती को शिक्षा प्रदान की थी। वो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आती हैं, जिसमें उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन करने के साथ साथ कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन भी किया है। तो यहाँ श्री विश्वंबर उस भाव में आते हैं और माता शची को वही जो शिक्षा है उसका वर्णन करते हैं। तो कपिल देव ने जिस प्रकार से मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, फिर भक्ति, रजोगुण में, तमोगुण में, सत्वगुण में, ये सब चीजों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, तो उसी को फॉलो करते हुए चैतन्य महाप्रभु कुछ जो शिक्षा है वो माता शची को प्रस्तुत करते हैं। तो वो उन्होंने कल, जैसे हमने पढ़ा कि उन्होंने ये शिक्षा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कहा था अपनी माता को कि हे माता, कि जो कृष्ण के सेवक है उनका कभी नाश नहीं होता और वो मृत्यु से कभी डरते नहीं हैं, और चाहे उनके जीवन में जन्म या मरण कुछ भी आ जाए वो भगवान की सेवा में बने रहते हैं, और उन्होंने कृष्ण भक्ति का जो प्रभाव है उसका भी वर्णन किया था। तो फिर आगे वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक जीव है वो कष्टमय स्थिति को प्राप्त करता है और कृष्ण को भजन न करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होता है। तो उसका वर्णन वो शुरू करते हैं और ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो जीव है माँ के गर्भ में होता है तो कितना कष्ट प्राप्त करता है और कैसे वो कृष्ण को प्रार्थना करता है। तो इन सबका वर्णन निमाय पंडित ने सची माता को किया है। चित्तदिया सुन माता जीवे रज गति, कृष्ण ना भजिले पाय जते क दुर्गति। कहते कि हे माता, चित्त मतलब ध्यान देकर सुनो कि यदि कृष्ण को हम भजन नहीं करेंगे ना, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, कृष्ण को भजेंगे नहीं, तो हमें कई प्रकार से दुर्गति प्राप्त होगी। एक होती है सदगति और दूसरी होती है दुर्गति। तो दुर्गति मतलब नाना प्रकार के कष्ट इस जगत में हमें प्राप्त करने पड़ेंगे और नरक की यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। मरिया मरिया पुनः पाय गर्भवास, सर्वांग हय पूर्व पापेर प्रकाश। तो वो वर्णन करने लगे कि ये जो जीव है, जैसे शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो पुनः जन्म लेता है मरता है। तो महाप्रभु कहते हैं मरिया मरिया, मर मर के, बार बार मर मर के पुनः गर्भवास प्राप्त करता है, पुनः माँ के गर्भ जो एक छोटा सा रूम है, एक टॉयलेट के समान, उसके जाके अंदर बैठता है। सर्व अंग हय पूर्व पापेर प्रकाश, और जब वो वहां निवास करता है तो उसके शरीर एक प्रकार से पापों का प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि माँ के घर में हम इसलिए जाते हैं, पूर्व पाप कर्मों के कारण बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है इस संसार में, भौतिक भोग की इच्छा हमारे हृदय में है। कटु अम्ल लवन जननी जत खाय, अंगे गिया लागे तार महामोह पाय। तो कहते जो मदर है, जो माँ है, जो खट्टी चीजें खाती है, नमकीन चीजें खाती है और इस प्रकार की जो चीजें खाती है, तो वो सारा ये जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है जिसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, हाँ, उसको लग जाता है और ये लगने के कारण बहुत उसको कष्ट अनुभव होता है उस बच्चे को। मानसमय अंग कृमि कुले बेड़ी खाए, घुचाए ते नाही शक्ति मरए ज्वालाए। तो उसका जो शरीर है मांसमय होता है और जो शरीर के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े हैं उसके शरीर को खाने लगते हैं। अब देखो वो बच्चे जो जन्म लेता है, बंद कर दीजिए, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे कृष्ण के शरीर का वर्णन आता है, वो तो भगवान है, उनका शरीर तो मक्खन जैसे सॉफ्ट है वैसे है। मैं चैतन्य महाप्रभु की एक लीला पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आता है कि स्वरूप दामोदर इतना कीर्तन करने में उनका अनुराग था कि वो जब कीर्तन करते थे तो महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते थे और नाचते ही रहते थे। तो जब ये सारे वैष्णव कीर्तन कर रहे थे ऐसे नगर संकीर्तन, तो जगन्नाथपुरी में एक ड्राई कुआं था, ये कुआं था जो कई सालों से उसमें पानी नहीं था, तो इनका नगर संकीर्तन वहां से जा रहा है और महाप्रभु इतने ऊपर कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, भावावेश में आकर रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, और वो कुएं के पास गया और कुएं के अंदर गिर गए। और जब भक्तों ने देखा कि अभी हमारे जो परम प्रभु हैं वो अभी शायद ना कुएं में, तो उन सबको पता था कई सालों से पानी नहीं है, वो ड्राई कुआं है, कि अभी तो हमारे प्रभु का शरीर तो कई सारी चीजों उनको लगी होंगी, बहुत कष्ट अनुभव कर रहे होंगे। तो जैसे भक्त लोग नजदीक आते थे देखते हैं कि पूरा कुआं मक्खन से भरा हुआ था और महाप्रभु उसमें पड़े हुए थे, तो उनको कुछ नहीं हो जाता, फिर सारे भक्त हरि बोल कहते और उनको निकाल के फिर वो कीर्तन करने लगते हैं। तो मक्खन के जैसे कृष्ण का साफ शरीर है। जीव गोस्वामी कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं तो कहते जब कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो उस समय इतना सॉफ्ट बालक था वो, कृष्ण ने जन्म लिया तो नीचे थे यशोदा माता के बेड पे थे, तो माता यशोदा ने पहली बार बालक को देखा क्योंकि वो ओल्ड हो गए थे। तब इतने सालों के बाद उनको नंद महाराज और यशोदा माता को बच्चा हुआ था कृष्ण, तो पूरा ब्रज आनंद में मग्न था और माता यशोदा को तो अभी कोई अनुभव ही नहीं था, ओल्ड होते जा रही थी कि बच्चे को कैसे बिठाना है हाथ में कैसे गोद में, उसको कुछ भी नहीं पता। तो कृष्ण नीचे ऐसे लेटे हुए हैं, मदर यशोदा को देख रहे हैं और तो माँ यशोदा को अपना चेहरा उनके चेहरे में दिखाई देता था, ऐसा था कृष्ण का शरीर। और वो डरती थी कि मेरा जो हाथ है बहुत हार्ड है, क्योंकि वो बालक इतना सॉफ्ट था, वो कहते थे कि मैं उसको पकड़ूंगी तो जैसे मक्खन को आप ऐसे पकड़ लो तो आपके हाथ उसके अंदर चले जाएंगे। तो माता यशोदा उस भाव में थी और इस प्रकार से वर्णन करते जीव गोस्वामी के ऐसा है कृष्ण का जो कलेवर है या शरीर है दिव्य। तो इस प्रकार से इतना सॉफ्ट तो नहीं हो सकता किसी बच्चा जो जन्म लेता है, लेकिन काफी सॉफ्ट होता है बच्चे का जो बॉडी है। और माँ के गर्भ में जब होता है तो वो मांस का एक टुकड़ा ही है जो बहुत सॉफ्ट है। तो सारे कीड़े जब माँ के गर्भ में, हम सब लोग थे, ये चीज को भूल जाना कितना बड़ा ये है, इतनी कष्टमय स्थिति को हमारे, इस चीज को हम स्वीकार भी नहीं कर सकते कि हमारा जन्म किसी छोटे से माँ के गर्भ से हम निकले हुए हैं बाहर। जैसे विज्ञानी लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि भगवान से जन्म हुआ है, वो तो सोचते कि बंदर से ही हम सब आए हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो इतना कष्ट प्राप्त करता है कि जब वो कीड़े काटते हैं माँ के गर्भ में तो उसके अंदर शक्ति नहीं होती है वो कीड़ों को धकेलने की या कुछ करने की, और जलने लगता है कष्टों से। नड़िते ना पारे तब त पंजरे र माझे, तबे प्राण रहे भवितव्य र काजे। कहते कि वो कीड़ों को दूर नहीं कर पाता और जो गर्भ रूपी जो पिंजरा है उसके अंदर वो सड़ा रहता है, पड़ा रहता है, और केवल इसलिए प्राण रहते उसके क्योंकि उसका जो आगे का जो जीवन है, उसके जो कर्मों के फल है वो भुगतने के कारण वो गर्भ में पड़ा रहता है। कौन आति पात किर जन्म नाय हाय, गर्भे गर्भे हय पुनः उत्पत्ति प्रलय। तो कहते कि गर्भ में इतना कष्ट है कि कभी कभी कुछ जो जीव होते हैं बहुत अधिक पापी, वो गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं और पुनः जन्म लेते हैं और पुनः मर जाते हैं। तो इतना पाप का ये इतना शक्तिशाली प्रभाव है कि माँ के गर्भ से बाहर उनको सूरज तो दिखाई नहीं देता, हाँ, और वो तो अंधेरी कोठड़ी है, हाँ, ब्लैक रूम है वो पूरी तरह से माँ के गर्भ के अंदर। हाँ, कितना भयानक है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हम, कल्पना करें तो हम दुख अनुभव होगा। सुन सुन माता जीव तत्व संस्थान, सात मासे जीवे र गर्भे ते हय ज्ञान। तो कहती है कि हे माता तुम ध्यान से सुनो, हाँ, कि जो जीव है माँ के गर्भ में होता है तो जब वो सात मास का होता है तो उसे ज्ञान पता है, मतलब उसको जानकारी स्मरण हो आता है किसी चीज का। तखने से स्मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्ण रे छाड़िया घन श्वास। तखने तो कहते हैं कि जब उसको स्मरण हो आता है, उसको बुद्धि 7 महीने का होता है तो उसको स्मरण हो जाता है अपनी स्थिति का, तो वो अनुताप करने लगता है, अपने आप को धिक्कारने लगता है और क्या करता है, जोर जोर से सांस छोड़ने लगता है और कृष्ण का स्मरण करने लगता है या कृष्ण की स्तुति करने लगता है। तो वो स्तुति निमाय पंडित ने बहुत सुंदर दी है जिसका वर्णन आता है यहाँ। कहता है जीव क्या कहता है जब माँ के गर्भ में होता है, तो वो कहता है और ये सब प्रार्थना हम सब ने की है, जो भी माँ के गर्भ में होता है एक प्रकार से वो जीव कृष्ण को ये सब प्रार्थनाएं करता है, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है व्यक्ति, वैसे ही सारे जो कष्ट हैं, सारे ये जो यातना हैं, दुख हैं, उन सबको भूल जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की हवा इतनी शक्तिशाली है, सब कुछ भुलाने वाली। तो जीव कहता है रक्ष कृष्ण जगत जीवेर प्राणना, तोमा भई दुख जीव निवे दिवे कात। कहते कि हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, आप सारे जीव और जगतों के प्राणनाथ हैं और आपके अलावा कौन है, किसके पास में जाओ और अपने दुख को बताओ। तो ये भक्त का गुण है, कोई भी विपदाएं आती हैं, दुख आते हैं तो भक्त किसको सबसे पहले कहता है, भगवान को रिपोर्ट देता है। जैसे द्रौपदी पर कष्ट आए तुरंत उसने कृष्ण को पुकारा, उत्तरा के ऊपर जब अश्वत्थामा ने वज्रास्त्र छोड़ा था, ने वज्रास्त्र क्या ब्रह्मास्त्र, तो वो उसने किसको पुकारा, पाही पाही मा योगी देव देव जगत पते। बल्कि उत्तरा के सामने सारे पांडव, हाँ, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था, लेकिन इसने किसी को नहीं पुकारा क्योंकि उसने सोचा कि कोई मेरी रक्षा करने की योग्य इस संसार में नहीं है केवल कृष्ण के अलावा। तो जो भी दुख आता है भक्तों के जीवन में तो उनका ये गुण है कि वो भगवान को पुकारते हैं किसी भी स्थिति में, चढ़ उतार आता है, अप एंड डाउन। जे कराए बंदी प्रभु छाड़ाए से सहज अमृत तेरा प्रभु माया कर किसे। तो वो कहता है कि हे कृष्ण कि जो व्यक्ति बंदी कर देता है किसी को, उसमें शक्ति होती है उसको छोड़ने की, वो छोड़ भी सकता है, लेकिन मेरे जैसे पहले से ही मरा हुआ है उसको आप क्यों और माया से माया में गिरा रहे हो, क्यों और माया से आच्छादित कर रहे हो। मिथ्याधन पुत्र रसे गुआ इलु जनम ना भजिलु तोर दुई अमूल्य चरण। कहते कि मैंने अपने कई जीवनों में अपना जो इतना महत्वपूर्ण जन्म है मनुष्य का वो गवा दिया है। किस चीज से गवाया है, इस रस का आस्वादन करने के लिए। संबंध रस कौन सा? माता का, पिता का, भाई बहन, संबंधियों का जो, और धन का जो उपभोग करना। तो इससे जो व्यक्ति को रस आस्वादन होता है, जो सुख अनुभव होता है, तो कहते कि इसमें मैंने कई जन्म बिताए हैं और मैंने ऐसा बिताकर आपके जो दो अमूल्य चरण हैं उनका मैंने भजन नहीं किया है। जे पुत्र पोषण कैलो आशे सभी धर्मे कोथा वासे सब गेल मोर यही कर्मे। तो मैंने जितने पुत्रों को पालन पोषण किया था, और पारिवारिक जीवन व्यक्ति धन अर्जन करता है तो कोई धर्म का कार्य करके तो धन आता नहीं है, कितना सारा पाप में उसको कार्य करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, गला काटना पड़ता है, जेब काटने पड़ते हैं, क्या क्या नहीं करके लोग धन कमाते हैं और फिर अपना परिवार का जीवन निर्वाह करता है और प्रयास करता है कि घर आके मेरे पत्नी का मुंह मुझे सूखा हुआ नहीं नजर आना चाहिए, हाँ चंद्रमा के समान उसका मुंह ऐसे पुलकित होना चाहिए, बच्चों के छोटे छोटे फूल की तरह ऐसे मुख खिलते हुए नजर आने चाहिए। यही देखने के लिए, क्योंकि ये देख के उसको आनंद आता है। ये गृहस्थ का आनंद क्या है? इनको खुश देखते हुए नजर आता है, बच्चे चिल्लाएंगे पापा पापा, तो ये पूरा भावावेश में आके गिर जाता है बेड पे या चेयर में, पत्नी उसके लिए आदर से आती है। तो यही तो ये गृहस्थ का सुख है। कृष्ण रुक्मिणी को कहते कि गृहस्थ का सुख क्या है कि पति पत्नी बैठ के हर्ष प्रयास करें आपस में। तो कृष्ण भी रुक्मिणी को हर्ष प्रयास करके उसको ये कर दिया था, अनकॉन्शियस कर दिया था। कृष्ण बुक में एक लीला पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से अधर्म से मेरे इन सबको पालन पोषण किया है, लेकिन मैं अभी देखता हूं कि वो सब लोग कहां चले गए हैं। तो इस प्रकार से जो जीव है भगवान की कृपा से जब कष्टमय स्थिति में होता है तो माँ के गर्भ में उसको स्मरण हो आता है। एखन ये दुखे मोरा के करी बेपार, तुम्हें से एखन बंधु करी बा उद्धार। तो ये जो मेरा दुख है इसको कौन पार करेगा? आप ही एकमात्र बंधु हैं और आप ही एकमात्र मेरा इस कष्टदायी स्थिति से उद्धार कर सकते हैं। जते क जानिनु सत्य तुम्हारा चरण, रक्ष प्रभु कृष्ण तोर लयनु शरण। तो कहता है कि आप, ये मैं जानता हूं कि आपके चरण कमल ही इस जगत में सत्य हैं और आप मेरी रक्षा करिए और मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूं। तुम्हें है न कल्पतरो ठाकुर छाड़िया, भूली लाऊ असत पथे प्रमत हाइया। तो कहता है कि जीव कहते कि आप जैसे ठाकुर, ठाकुर कौन? कृष्ण। आप जैसे ठाकुर के चरणों की सेवा करना छोड़कर और आप कैसे हैं? कल्पतरु के समान है। कल्पतरु के नीचे बैठो और जो भी आप इच्छा करोगे सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो हे कृष्ण, आप तो उस कल्पतरु वृक्ष के समान हैं और आप जैसे ठाकुर को, आप जैसे भगवान को छोड़कर मैं क्यों आपको भूलकर असत कार्य क्यों कर रहा हूं, पागल की तरह क्यों भटक रहा हूं इधर उधर। उचित योग्य शास्त्री हाय करीला तबे कृपा कर महाशय। तो फिर वो कहते हैं कि यह अच्छा हुआ आपने मुझे सही दंड दिया है, पनिशमेंट दिया है इस मां गर्भ में डाल के, जन्म मृत्यु के सागर में डाल के, ताकि यह योग्य पनिशमेंट है कि आप मुझे फिर कृपा करोगे इससे बाहर निकालने के लिए और आप मेरे ऊपर कृपा करिए हे महाशय। यही कृपा कर जन तुमा न पासरी, जे खाने से काने के ने ना जन्मी ना मरी। तो कहते हैं कि आप मैं मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए या ये कृपा करिए कि मैं चाहे कहां भी मरूं या कहां भी जन्म लूं, लेकिन क्या करूं वहां आपका मुझे विस्मरण नहीं होना चाहिए, वहां मुझे आपका स्मरण होना चाहिए। जेखाने तुम्हारा नाही यशर प्रचार, जेथा नाही वैष्णव जनेर अवतार। मुझे कहां जन्म नहीं चाहिए? जहां आपके यश का प्रचार नहीं हो रहा है, आपके नाम रूप गुण और आपके कार्यकलापों का प्रचार नहीं हो रहा है और जहां वैष्णव गण अवतरित नहीं हुए हैं, ऐसे स्थानों में मुझे जन्म मत दो। तो देखो कितना ज्ञान है, एक जीव जब माँ के गर्भ में होता है और ये उसको स्मरण कैसे आता है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, मुझसे ही स्मृति और विस्मृति आती है। तो भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में है और वो हर जीव को याद कराते हैं, अवगत कराते हैं वास्तविक स्थिति से। एकाने तुम्हारा यात्रा महोत्सव नाही, इंद्रलोक है ले वो तहा नहीं चाहे, कि जहां आपके लिए फेस्टिवल्स नहीं ऑर्गेनाइज होते, आपके जो उत्सव हैं उनको मना ही नहीं जाता, ऐसे स्थानों में मुझे जन्म नहीं चाहिए, चाहे वो इंद्रलोक क्यों ना हो, स्वर्गलोक क्यों ना हो, मुझे ऐसे स्थान में नहीं रहना है या उस स्थान में नहीं स्थित होना है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक वृंदावन दास ठाकुर कोट करते हैं, या महाप्रभु ने ये बोला, नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवदस्तताश्रया, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम। तो कहते थे नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां वैकुंठ के कृष्ण हैं या भगवान हैं उनकी कथा नहीं है और उनके भक्त नहीं हैं, जो भागवत का जिन्होंने आश्रय लिया है, इनके अलावा मुझे ऐसे किसी जगह में जन्म मत दीजिए। तो इस प्रकार से निमाई पंडित अपनी माता को, क्या एक जीव माँ के गर्भ में होता है और वो क्या स्मरण करता है, प्रार्थना करता है, उसका वर्णन करते हैं। गर्भवास दुख प्रभु यहो मोर भाल, जदि तोर स्मृति मोर रहे सर्वकाल। तो एक प्रकार से देखा जाए ना, ये तो ऐसी प्रार्थना तो शुद्ध भक्त करता है। ऐसी प्रार्थना कौन करता है, शुद्ध भक्त। तो ये कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे गर्भ में रहना बहुत अच्छा है। क्यों? गर्भ में आपका स्मरण हो रहा है, इसलिए, और मुझे बाहर नहीं चाहिए, जहां आपका स्मरण नहीं हो रहा है वो स्थान नहीं चाहिए। तोर पाद पद मेरा स्मरण नाही जथा, जहां आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं कर पाता हूं। हे न कृपा कर प्रभु ना फैली बात था। तो जन्म लेने का मतलब है हमें फेंक देना। तो किसी जीव को एक फुटबॉल की तरह कहा गया है, जैसे फुटबॉल को हर कोई लात मारता है, किक मारता है, यहां से वहां फेंक देता है। तो उसी प्रकार से जीव नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे। तो नाना योनि सदा फिरे, अलग अलग योनियों में अलग अलग माताओं के गर्भ में जाता है और जन्म लेता है और गंदी चीजें खाते रहता है। आजकल तो मनुष्य भी क्या क्या नहीं खाता है, आजकल तो इतने फास्ट फूड हो गए हैं, विदेशों में तो क्या क्या कॉकरोच का आचार, सांप को खाया जाता है, और हाँ बंदरों को। मैं अभी एक हमें मायापुर में एक वीडियो देखा था, तो उसका नाम था फेसेस ऑफ डेथ। तो उसमें वो देखा, हमने मृत्यु दिखाया था उसमें सारा, तो भक्तों के लिए दिखाया था, हम तो पूरा डर गए। तो उसमें दिखाया था कि एक फैमिली बैठा है होटल में और उन्होंने ऑर्डर दिया एक बंदर चाहिए, तो बंदर आ जाता है उनके लिए, और वो राउंड टेबल था, बच्चे माता पिता सब बैठे किस चीज को खाने के लिए, जीवित बंदर। तो वो बंदर को, और जब वो जो टेबल है डाइनिंग टेबल, तो उसको एक छोटा सा होल था बीच में, जिसमें इतना ही गर्दन उस बंदर का निकल सकता है, और नीचे से बंदर को बांध दिया है। तो उस बंदर का गर्दन केवल उस टेबल के ऊपर इतना ही था। तो ये सब क्या करते थे, हरेक के पास छोटा सा हथौड़ा था और हरेक के पास स्ट्रॉ था, स्ट्रॉ जैसे हम जूस पीते हैं, क्या होता है वो नली का स्ट्रॉ होती है। तो उन लोगों ने छेद किया, उस बंदर चिल्ला रहा है, आप वो देखेंगे तो मृत्यु वास्तव में लगेगा कि ये जीवन कितना कष्टमय है, क्यों नहीं मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं ठीक ढंग से, क्योंकि मृत्यु तो मेरे लिए अभी टंगी हुई तलवार मेरे सर में बैठी है। तो वो लोग करते हैं उसको छेद करते हैं, और इतना चिल्लाता है बंदर, इतना चिल्लाता है कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, और सब लोग टेबल में आनंद में जा रहे हैं, और स्ट्रॉ डाल के उसका वो ब्लड पी रहे मनुष्य लोग। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि कितना, मतलब पूर्व आसुर भी नहीं करते थे ऐसे कार्यकलाप जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं। चाइनीज, बंगाल, और मुझे एक डिवोटी बता रहा था कहां चाइना के लोग जहां आते हैं काफी सारे काम करने के लिए इंडिया में किसी जगह, तो वहां आपको मेंढक आसपास में कहां नहीं मिलेगा और ऐसी कई चीजें नहीं मिलेगी जो उन लोगों ने खत्म कर दी है उस एरिया में, जिनका आचार बनाते हैं और सब्जियां बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये आसुरों से ज्यादा गिरी हुई सभ्यता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नाना योगी सदा फिरे, अलग अलग शरीरों में जाते हैं, करदय भक्षण करे, गंदी चीजें खाते हैं हम। तो यह प्रार्थना करता है ये जीव कि हे कृष्ण, कि जहां आपके चरण कमलों का मुझे स्मरण नहीं होगा, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मुझे ना फैली बात तथा मुझे फेंको मत वहां। और एक प्रकार से हमें फेंका जाता है इस भौतिक जगत में, हमें फेंका जा रहा है माँ के गर्भ से, क्या करते हैं हमें फेंकते हैं अलग अलग जगहों में। यही मत दुख प्रभु, कोटि कोटि जन्म पाइलो विस्तर प्रभु, ये सब मोर कर्म। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मैंने इस प्रकार से बहुत सारे जो कष्ट हैं वो प्राप्त किया है कोटि कोटि जन्मों में बहुत विस्तार से, ये मेरे सब कर्मों के कारण ही कष्ट मिले हैं। से दुख विपद प्रभु रहो बारे बार, जदि तोर स्मृति थाके सर्व वेद सार। तो सारे वेदों का सार क्या है? कृष्ण का स्मरण करना। जैसे ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण का हमेशा स्मरण करना चाहिए, कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हे कृष्ण, कि मुझे इस कष्टदायक स्थिति में रहने दो, इस विपदा में रहने दो बार बार, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वेदों का जो सार है उसका मैं पालन कर रहा हूं कि आपका स्मरण हो रहा है। और हमारे जीवन में भी ऐसा है, जब कष्ट आता है या बीमार हो जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि नहीं अभी थोड़ा भजन करना होगा, थोड़ा सिंसियरली लेना होगा भक्ति। जब सब कुछ ठीक चलता है, शरीर भी ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो लगता है कि बहुत अच्छा भक्ति हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा भक्ति नहीं है। तो एक प्रकार से कुंती महारानी कहती है, विपदा संतु वा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि हे कृष्ण, विपदाएं मेरे जीवन में आने दो। क्यों आने दो? क्योंकि आपका स्मरण होता है, और आपका स्मरण मीन्स आप स्वयं आते हैं, और आपका जिसको स्मरण होगा वो इस भौतिक जगत में नहीं रह पाएगा। तो एक भक्त का जीवन ऐसे ही होना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण उसको हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है कि एन केन प्रकारेन मनः कृष्ण निवेशयन्, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो कि एन केन प्रकारेन कृष्ण का स्मरण। खाली है भक्तों से मिला, भक्तों से मिलके एन के दुनिया भर के इधर उधर की चर्चा की, कृष्ण से संबंधित बातें करो, नहीं तो बात ही मत करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि जो जीवा कृष्ण के बारे में नहीं बोलती वो प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है। और अब वेश्या के संग कर रहे हो, वेश्या के संग में आप निवास कर रहे हो, तो इसलिए ये बहुत जोर दिया है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे महाप्रभु के बारे में, स्वयं उनके रिलेटिव्स बताते हैं कि बा वो कहते हैं कि कैसे अहर्निश की भोजने की शयने कि बा जागरने कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु ना बाखाने, कि सोते हुए जागते हुए सबके सब समय इनको क्या हो गया है, कृष्ण के बिना और कुछ बाखान नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो महाप्रभु भी ऐसे ही करते थे, जब ये नवदीप में थे, पंडित थे, बहुत स्कॉलर, और इतना घमंड था कि इन जो वैष्णव भक्त थे इनसे दूर भागते थे। तो जो मुकुंद दत्त थे वो भी, उनके भी शिष्य होते थे उनके साथ, वो भी पढ़ाते थे, पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे। तो निमाय पंडित अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और वहां से मुकुंद आ रहे थे, क्योंकि मुकुंद को एक दिन हाथ पकड़ा, क्योंकि इनको इतनी आदत थी निमाय को, मतलब अपना वो वर्चस्व दिखाना कि मैं बहुत स्कॉलर हूं। किसी का भी हाथ पकड़ेंगे और उसको प्रश्न पूछेंगे और उसको हरा के भेज देंगे कि जाओ कल से ठीक से पढ़ के आओ और फिर मुझे मिलो, पूरा बेइज्जत करके उसको छोड़ भेज देंगे। और वो अपने भक्तों के साथ ही ऐसा करते थे, जो वैष्णव होते थे उनको ही पकड़ते थे। तो मुकुंद जाता है और मुकुंद जब दूसरे दिन आ रहा होता है अपने शिष्यों के साथ, तो सामने देखता है, दूर से ही देखता है कि वो तो निमाया और वो शिष्य आ रहे उसके, तो वो तुरंत अपना चुपके से रोड चेंज कर देता है, इसके सामने नहीं जाना है मुझे। तो निमाय ने ध्यान से देखा कि ये मुकुंद सामने से आ रहा था और जैसे मुझे देखा अपना रास्ता चेंज किया है उसने। तो शिष्यों को कहता है कि क्यों ये मुकुंद ने ऐसा क्यों किया है? तो उनके शिष्य कहते हैं कि शायद मुकुंद को कोई महत्वपूर्ण काम आ गया होगा जिसके कारण उन्होंने रास्ता चेंज किया। निमाय कहते नहीं, क्योंकि ये मुकुंद के ऐसा गुण है कि वो केवल कृष्ण के बारे में ही बोलना चाहता है, कृष्ण कथा के अलावा कुछ और चीज नहीं करना चाहता। हाँ, इसलिए वो मुझसे दूर भागना चाहता है क्योंकि मैं कृष्ण कथा नहीं करता हूं। तो फिर सब शिष्यों को कहते एक दिन आएगा मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि सारे लोग मेरा संग करने के लिए आएंगे, इवन ब्रह्मा जी और शिव जी मुझसे कृष्ण कथा सुनने के लिए आएंगे। ऐसे निमाय पंडित ने गर्जना की और आगे चल के ऐसे हुआ। तो इस प्रकार से सार क्या है सारे वेदों का, उनका स्मरण होना चाहिए और उसलिए हमें इतनी प्रकार की सेवाएं हैं, इतना प्रकार का अध्ययन है, इतनी साधनाएं हैं, ये सब चीजें इसलिए हैं कि केवल कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। इसलिए भक्त को इतना चतुर होना चाहिए अपने जीवन में, ये खुद का स्वार्थ है कि जैसे समय मिले तुरंत पकड़े, खाली समय किताब को पकड़े, कुछ खाली समय मिला सुने, खाली समय भक्तों से चर्चा करें, कैसे किसके बारे में, कृष्ण के संबंध में। हाँ, तो जैसे खाली तो खाली नहीं रहना है हमें, किसी ना किसी में पकड़ के रहना है। हाँ, तो ये एक स्पिरिचुअली प्रोग्रेस का एक लक्षण है कि हमें किसी ना किसी चीज को कृष्ण भावना के पकड़ के रहे, सेवा में या फिर भागवतम को पढ़े या कृष्ण के बारे में सुने, भक्तों से चर्चा करे कृष्ण के बारे में। तो ये है कृष्ण का स्मरण, अव्यर्थ कालत्वम, ये भाव के जो धरातल पर कोई आता है तो उसका एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम, वो अपना समय गवाता नहीं है। हे न कर कृष्ण यवे दाश जोग दिया चरण राख दासी नंदन करिया। तो निमाय पंडित या वो जीव क्या बोल रहा है उसका वर्णन करते हैं कि जो जीव प्रार्थना करता है कि मुझे या तो आप ऐसा करो कि कोई आपके जो दासी हैं, मतलब आपके जो भक्त हैं, उनका पुत्र के रूप में मुझे जन्म दे दो। बारे करह जदि ये दुखे रपार तुम अभय तबे प्रभु नाचा ही मुआर। तो कहते कि हे कृष्ण, एक बार इस दुख से मुझे आप छुड़ा दोगे तो फिर आपको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो प्रार्थना करता है कि चाहे आप किसी दासी का पुत्र के रूप में मुझे जन्म दे दो जो आपकी दासी है, जैसे नारद दासी पुत्र थे लेकिन उनकी माँ वैष्णव की सेवा करने में उनकी माँ का अनुराग था, तो नारद भी उनकी सेवा करके कृष्ण कथा सुन के महान भक्त बने। यही मत गर्भवासे पड़े अनुक्षण ताहो बाल बासे कृष्ण स्मृति र कारण। तो कहते इस प्रकार से गर्भवास में जो तड़पता हुआ जो जीव है, हर समय जलता हुआ जो जीव है, वो इस स्थिति को बहुत अच्छा समझता था कि ये बहुत अच्छा है। भालवासे, भाल भाल में वो भाल में अच्छा, भालो ना खाए बार भालो ना परिवो, ज्यादा भाल मत खाओ, झाल खाते हैं, झाल और एक होता है भाल, हाँ झाल मुड़ी खाते हैं बंगाल में। हाँ, कृष्ण स्मृति का कारण, क्योंकि ये कष्ट भी होगा मेरे जीवन में तो ये कष्ट क्या देगा मुझे, कृष्ण का स्मृति देगा। अभी हम पूरा स्मृति भूल गए, विस्मृति, कई बार हम कृष्ण की इतनी सेवा में लगते हैं कि पता नहीं चलता कि किसकी किसकी सेवा कर रहा हूं, ऐसी हालत हो जाती है हमारी। हाँ, और कई बार डेटिस के सामने खड़े लेकिन पता ही नहीं चलता कि कौन है या किसके सामने खड़े या किसके लिए कीर्तन कर रहा हूं, किसके लिए बजा रहा हूं। हाँ, तो गुरु पूजा में होते तो प्रभुपाद दिखते ही नहीं हमें, अपना ही पूजा होता है यहाँ, मस्ती करते रहते, कुछ करते रहते, ये क्या है, ये क्या है, कृष्ण से दूर जाना। इसलिए तो बार बार गुरु पूजा में कहते वंद मुए सावधान मत, तो वहां सावधान होना चाहिए, और वहां हम सावधान नहीं होते, प्रभुपाद को तो देखते ही नहीं, उनको प्रार्थना ही नहीं करते हैं, आज सावधान होकर वहां खड़े रहते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि सारे जो वेदों का भी सार है कि कृष्ण का स्मृति होना चाहिए या कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कपिल देव के भाव में आकर सची माता को ये बता रहे हैं कि जो जीव है माँ के गर्भ में होता है तो कृष्ण को प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थनाएं एक शुद्ध भक्ति की प्रार्थनाओं के समान है। तो जीव यही कहता है कि ये जो मुझे कष्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे आपका स्मरण हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं अपनी माता को, स्तवेर प्रभावे गर्भे दुख नहि पाए, काले पड़े भूमि ते अपन अनिच्छाय। तो वो कहते हैं कि ये जो स्तव इसने किया या ये जो स्तव मैं बोल रहा हूं, इसके कारण मुझे दुख का अनुभव नहीं होता है। तो ये प्रभाव है कृष्ण के कीर्तन करने से या कृष्ण की प्रार्थना करने से, कष्ट आते भी हैं तो भी उनका अनुभव हमें नहीं होता है। जैसे कई बार हम परिक्रमाएं करते हैं लेकिन जब कीर्तन अकेले वैसे करेंगे तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए कितने किलोमीटर चलते जाएंगे। हाँ, जैसे उस दिन रथ यात्रा में 8 घंटे की रथ यात्रा थी, तो भक्त लोग हमारे 8 घंटा बजा रहे थे इस दिल्ली में, हाँ, और नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन कोई थकान नहीं है उनके जीवन में। हाँ, तो ये प्रभाव है कृष्ण नाम का, कृष्ण कीर्तन का। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो जीव है यही प्रार्थना करके दुख का अनुभव नहीं करता और उसकी इच्छा नहीं होती इस जगत में आने की, लेकिन फिर भी उसको बाहर आना पड़ता है। सुना सुना माता जीव तत्वेर संस्थान, भूमि ते पड़िले मात्र हय आगे यान, मूर्छागत हय क्षणे क्षणे कांदे श्वासे, कहिते ना पारे दुख सागरे ते भासे, कृष्णेर सेवक जीव कृष्णेर मायाय, कृष्णना भजिले ये मत दुख पाय। तो कहते कि हे माता सुनो सुनो, ये जीव के कष्टों को सुनो, इसको जबरदस्ती जमीन पे पड़ना होता है माँ के गर्भ से जन्म लेकर, और जन्म लेता है तो इतना कष्ट होता है कि बाहर आते ही मूर्छित हो जाता है, और कभी कभी आंखें खुलती हैं या स्मरण हो आता है, कभी रोने लगता है, सांस ऊपर नीचे करने लगता है, और उसको बोलना भी नहीं आता, और बल्कि वो ये जगत दुख के सागर में गिर जाता है। हाँ, तो ये कष्टमय स्थिति है छोटे से अवस्था में जब हम बालक होते हैं, तो हर कोई रोते हुए जन्म लेता है ना, और बीच में भी रोते और आखिरी में भी रोते हुए चला जाता है, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं, जन्म लेते तभी भी नहीं रोते, बीच में भी नहीं रोते और आखिरी में भी नहीं रोते। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है तो उसकी यह स्थिति है, जीवन भर रोता ही रहता है। आप देखो भौतिक, हम अनुभव नहीं करते भौतिक कष्टों को, ये गृहस्थ व्यक्ति कितने प्रकार के कष्टों से गुजरता है। बाहर कृष्णेरा सेवक का जीव कृष्णेरा माया है, कृष्ण का सेवक कौन है, जीव है, लेकिन कृष्ण की माया से कृष्ण ना भजले मत दुख पाए। तो ये दुख क्यों प्राप्त करता है, कृष्ण का भजन नहीं करने के कारण, कृष्ण की भक्ति नहीं करने के कारण वो कष्ट प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता को ये उपदेश देते हैं, और भी आगे वो उपदेश कल भी हम कंटिन्यू करेंगे, और निमाय पंडित और सुनाएंगे कि कितना भाग्यवान है जो कृष्ण की भक्ति करता है। श्री चैतन्य भागवत की, वृंदावन दास ठाकुर की, गौर भक्त वृंद की।